एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे साहित्यिक सफर पर निकल रहे हैं जो हमें लगभग 1000 साल पीछे ले जाएगा।
नमस्कार, और ये सफर है जापान के उस दौर का जब दुनिया का शायद पहला आधुनिक उपन्यास लिखा गया।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गेंजी की कहानी यानी गेंजी मोनोगटारी की, एक ऐसी रचना जिसने कथा कहने के अंदाज को ही बदल दिया।
और इसकी लेखिका मुरासाकी शिकिबू अपने आप में मतलब एक मिसाल है। 11वीं सदी की शुरुआत, हेयान काल, और एक दरबारी महिला ये कालजी रचना लिख रही है।
सोचिए जरा, वो हेयान दरबार आज का क्योटो, कला संस्कृति शिष्टाचार का चरम।
जी बिल्कुल, लेकिन ये एक बंद दुनिया भी थी, बाहर से कटी हुई, अपने नियमों में जकड़ी हुई।
हाँ, जहाँ कविता लिखना, सुंदर लिखावट, यहाँ तक कि कपड़ों का रंग या इत्र चुनना भी आपकी पहचान तय करता था।
सही कहा। और मुरासाकी हिकिबू, जो खुद महारानी शोशी की परिचारिका थीं, उन्होंने इस माहौल को बहुत नज़दीक से जिया, महसूस किया।
शायद इसीलिए वो किरदारों के मन में इतनी गहराई तक उतर पाईं। गेंजी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस पूरे युग का, वहाँ के लोगों के जीवन का, उनकी भावनाओं का एक तरह से आईना है।
और क्या, विशाल रचना है, 54 अध्याय, करीब 800 शास्त्रीय कविताएं जिन्हें वाका कहते हैं। ये कविताएं तो जैसे किरदारों की आवाज बन जाती हैं।
तो आज हम इसी दुनिया में गोता लगाएंगे, गेंजी की जिंदगी, उसके रिश्ते, वो समाज और वो सवाल जो मुरासाकी ने उठाए और जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं कहानी के नायक से, हिकारू गेंजी, चमकता राजकुमार।
हाँ गेंजी, सम्राट और उनकी एक प्रिय उपपत्नी, किरित्सुबो का बेटा, बहुत सुंदर, बहुत प्रतिभाशाली।
लेकिन उसकी माँ वो दरबारी ईर्ष्या का शिकार हो गई और गेंजी के बचपन में ही गुजर गईं। ये दुख शायद गेंजी के साथ हमेशा रहा।
सम्राट उसे बहुत चाहते थे, शायद अपनी खोई हुई प्रेयसी का अक्स उसमें देखते थे।
पर यही बात उसके लिए खतरा भी थी, राजदरबार की राजनीति आप जानती हैं।
बिल्कुल, तो सम्राट ने उसे बचाने के लिए एक फैसला किया, उसे उत्तराधिकार से हटा दिया।
हाँ, और उसे एक सामान्य कुलनाम दिया, मिनामोटो, या कहें गेंजी। इससे उसे शाही बंधनों से आजादी तो मिली,
लेकिन शायद एक खालीपन भी रह गया, एक पहचान की तलाश, और यहीं से मुझे लगता है उसकी वो आदर्श प्रेम की अंतहीन खोज शुरू होते हैं।
सही कहा, जैसे वो हमेशा उस माँ की ममता, उस संपूर्णता को ढूंढ रहा हो।
और सबसे पहले ये तलाश उसे कहाँ ले जाती है? अपनी सौतेली माँ महारानी फुजीत्सुबो के पास,
जो आश्चर्य की बात है, बिल्कुल गेंजी की माँ जैसी दिखती थी।
यहीं से कहानी में वो वर्जित प्रेम का धागा उलझना शुरू होता है।
और इसी शुरुआती दौर में गेंजी के जीवन में और भी महिलाएं आती हैं, है ना?
जी, एक तो है लेडी आउई, उसकी औपचारिक पत्नी, रिश्ता राजनीतिक रूप से जरूरी पर ठंडा।
हाँ, और दूसरी तरफ लेडी रोकुजो, वो ज्यादा उम्र की, बहुत समझदार पर थोड़ी जटिल, जटिल और कह सकते हैं तीव्र भावना वाली। उसकी ईर्ष्या आगे चलकर बहुत मायने रखती है।
और फिर वो छोटी बच्ची मुरासाकी।
हाँ, मुरासाकी, जिसे गेंजी देखता है और तय करता है कि इसे वो अपनी देखरेख में पालेगा, अपनी आदर्श स्त्री बनाएगा।
ये थोड़ा उस जमाने के हिसाब से भी अजीब लगता है ना?
यही गेंजी का विरोधाभास दिखता है। वो कलाकार है, संवेदनशील है।
बिल्कुल, संगीत, कविता, नृत्य, हर कला में माहिर,
हेयान आदर्शों का प्रतीक।
लेकिन साथ ही अपनी इच्छाओं के आगे वो अक्सर नैतिक रेखाएं लांघ जाता है।
हाँ, उसकी ये निरंतर प्रेम की खोज, शायद माँ की कमी से उपजी, उसे कई बार स्वार्थी और विनाशकारी भी बना देती है।
उसकी कहानी किसी नायक की विजय गाथा नहीं है, वो एक इंसान की यात्रा है, गलतियां करने, दुख उठाने और धीरे धीरे बदलने की।
बिल्कुल, शुरुआती अध्याय करीब 1 से 33 तक इसी उथल पुथल से भरे हैं, महारानी फुजीत्सुबो के साथ उसका वो गुप्त रिश्ता।
ओह, वो तो बहुत ही विस्फोटक था, न केवल नैतिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी।
और उसे एक बेटा भी होता है, रेजेई, जिसे दुनिया सम्राट का बेटा समझती है। ये राज उन दोनों को अंदर ही अंदर जलाता रहता है।
और लेडी रोकुजो का क्या? आपने कहा था उसकी ईर्ष्या।
हाँ, लेडी रोकुजो, जब गेंजी का ध्यान दूसरी महिलाओं, खासकर आउई, पर जाता है, तो रोकुजो का अपमान और गुस्सा इतना बढ़ जाता है
कि
कि उसकी आत्मा, जिसे मोनोनोके कहते हैं, वो जैसे एक जीवित प्रेत बनकर गेंजी की पत्नियों और प्रेमिकाओं पर हमला करती है।
सच में ये तो बहुत डरावना है।
हाँ, और लेडी आओई की मौत बच्चे को जन्म देने के बाद इसी मोनोनोके के हमले से होती है। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं, ये शायद उस दबे हुए समाज में एक शक्तिशाली स्त्री के क्रोध का प्रतीक है।
अविश्वसनीय। और इसी सब के बीच वो मुरासाकी को अपने घर ले आता है।
जी, उसे अपनी आदर्श पत्नी बनाने की शिक्षा देना शुरू करता है। लेकिन गेंजी के पुराने कर्म वो उसका पीछा नहीं छोड़ते।
मतलब?
पिता की एक और उपपत्नी के साथ उसके संबंध का पता चल जाता है। राजनीतिक दुश्मन हावी हो जाते हैं।
तो फिर
आता है सुमा और आकाशी के दूर दराज वीरान तटीय इलाकों में, निर्वासन में।
अच्छा, तो ये निर्वासन एक तरह का टर्निंग पॉइंट हुआ।
बिल्कुल, पहली बार वो सत्ता, शानो शौकत से दूर अकेलेपन और मुश्किलों का सामना करता है। उसे सोचने का मौका मिलता है
जीवन की नश्वरता के बारे में, जिसे जापानी में मोनोनोआवारे कहते हैं।
हाँ, वो भी, और अपने कर्मों के फल के बारे में भी। इंगा, ये अनुभव उसे बदलता है। वो पहले से ज्यादा गंभीर, ज्यादा परिपक्व हो जाता है।
लेकिन क्या वो वहां अकेला रहता है?
नहीं, पूरी तरह नहीं। वहीं उसकी मुलाकात लेडी आकाशी से होती है, एक प्रांतीय गवर्नर की बेटी। उससे भी उसका रिश्ता बनता है और एक बेटी होती है,
गेंजी की एकमात्र बेटी।
जी, लेकिन फिर राजधानी से बुलावा आता है। राजनीतिक माहौल बदल चुका है।
कैसे?
उसका वो गुप्त बेटा रेजई अब सम्राट है, तो गेंजी का प्रभाव और रुतबा वो अपने शिखर पर पहुंच जाता है।
अच्छा, तो अध्याय 34 से 41 तक हम उसे शक्ति के शिखर पर देखते हैं।
हाँ, वो शानदार रुकुजो एस्टेट बनवाता है, चार हिस्से, हर मौसम के लिए एक।
वाओ।
और वहाँ वो अपनी महत्वपूर्ण महिलाओं को रखता है, मुरासा की लेडी आकाशी
जी,
मुरासा की वसंत महल में, आकाशी शीत महल में। बाहर से देखो तो सब कुछ सुनहरा लगता है, एकदम परफेक्ट।
लेकिन क्या अंदर से भी ऐसा ही था? मुझे शक है।
आपका शक सही है। इस चमक के नीचे तनाव है, उदासी है। मुरासा की, जो इतने सालों से उसकी सबसे वफादार साथी रही,
उसे पत्नी का आधिकारिक दर्जा नहीं मिलता है ना?
नहीं। और फिर गेंजी एक और कह सकते हैं बड़ी भूल करता है।
क्या?
राजनीतिक कारणों से वो सम्राट की युवा तीसरी राजकुमारी से शादी के लिए मान जाता है।
ओह, मुरासाकी पर क्या बीती होगी?
वो टूट जाती है, बिल्कुल। और यहीं देखिए कर्म का पहिया कैसे घूमता है। इंघा,
कैसे?
वो तीसरी राजकुमारी उसका गेंजी के भतीजे काशीवागी के साथ गुप्त संबंध बन जाता है।
नहीं।
हाँ, और उससे एक बेटा पैदा होता है, काउरू।
तो अब गेंजी उसी स्थिति में है।
बिल्कुल।
जैसे कभी उसके पिता थे रेईजी को लेकर, अब गेंजी को दुनिया के सामने काउरू को अपना बेटा मानना पड़ता है, ये जानते हुए कि वो उसका नहीं है। ये जैसे उसके अपने ही अतीत का आईना है।
ये तो
उपन्यास की सबसे बड़ी नैतिक सीखों में से है, कर्मों का फल मिलता जरूर है।
निश्चित रूप से। पर ये कहानी सिर्फ गेंजी की नहीं है, जैसा आपने कहा, वो महिलाएं, उनके बिना ये अधूरी है।
सही बात है। हैयान समाज, जहां महिलाओं के पास सांस्कृतिक परिष्कार तो था पर आजादी नहीं, पर्दों के पीछे की जिंदगी।
लेकिन मुरासाकी शिकिबू ने उन्हें सिर्फ बेचारी नहीं दिखाया, उनका जटिल मन, उनकी बुद्धि, उनकी भावनाएं, निराशाएं और उनका हौसला सब कुछ सामने लाई।
सबसे पहले लेडी मुरासाकी, जिसे गेंजी ने खुद गढ़ा।
वो समर्पित है, बुद्धिमान है,
लेकिन उसे हमेशा गेंजी की बेवफाई सहनी पड़ती है। आधिकारिक पदवी नहीं मिलती। उसकी कहानी में एक शांत पीड़ा है, धैर्य है, पर स्वाभिमान भी है। गेंजी के जीवन में शायद वही स्थिरता का केंद्र थी, और उसकी मृत्यु वो गेंजी को तोड़ देती है।
बिल्कुल। फिर महारानी फुजित्सुबो, गेंजी का पहला आदर्श, माँ की छवि, उनका रिश्ता अपराध बोध और कर्तव्य के बोझ तले दबा हुआ
एक त्रासद नायिका।
और लेडी रोगजो, वो मोनोनोके वाली बात।
हाँ, लेडी रोगजो, गर्व, बुद्धि, प्रतिभा, सब कुछ था उसमें, लेकिन जब अहंकार को ठेस लगती है तो ईर्ष्या विनाशकारी हो जाती है।
इसका वो आत्मा का प्रेत बनना,
क्या वो उस समाज में स्त्री के दमित क्रोध का प्रतीक था, जहां वो खुलकर कुछ कह नहीं सकती थी?
बहुत संभव है। वो डराती है, पर कहीं ना कहीं उसके लिए एक सहानुभूति भी महसूस होती है।
सच में इन किरदारों में कमाल की मनोवैज्ञानिक गहराई है। चलिए अब कहानी के अंतिम हिस्से की तरफ चलते हैं, गेंजी का पतन और अगली पीढ़ी।
जी, अध्याय 42 के बाद कहानी का रंग बदलता है। अब गेंजी के जीवन में नुकसान हावी है, दुख हावी है।
सबसे बड़ा नुकसान तो लेडी मुरासाकी की मृत्यु ही होगी।
हाँ, सालों का तनाव, तीसरी राजकुमारी से शादी का सदमा, मुरासाकी बीमार पड़ती हैं और गुजर जाती हैं। ये गेंजी के लिए अंतिम प्रहार जैसा था, जैसे उसके जीवन का सूरज ही डूब गया हो।
उसके बाद गेंजी का क्या होता है?
वो जीने की इच्छा खो देता है, दुनिया से कट जाता है, धर्म कर्म में मन लगाने की कोशिश करता है।
लेकिन उपन्यास उसकी मौत दिखाता नहीं है?
नहीं, सीधे तौर पे नहीं। अध्याय 41 के अंत में वो अपनी नश्वरता के बारे में सोच रहा है, और फिर अगला अध्याय वो खाली है। शीर्षक है बादलों में विलीन।
कितना सुंदर और सांकेतिक अंत है,
है ना? और इसके बाद कहानी का केंद्र बदल जाता है। आखिरी 10 अध्याय, उजी अध्याय, वो गेंजी के बेटे काउरू और पोते न्यू पर हैं।
ये बदलाव क्यों? क्या ये दिखाता है कि जीवन चलता रहता है?
शायद, या शायद ये गेंजी के भव्य युग की तुलना में एक ज्यादा फीके, ज्यादा निराशाजनक समय को दिखाता है।
काउरू कैसा है? वो जो गेंजी का बेटा नहीं है,
वो गंभीर है, उदास रहता है, फैसला नहीं कर पाता। अपने जन्म के रहस्य और अपने शरीर से आने वाली एक अजीब सी पवित्र गंध से परेशान रहता है।
और नियो, गेंजी का पोता,
वो बिल्कुल अपने दादा जैसा है, आकर्षक, जोशीला, थोड़ा चंचल और गैर जिम्मेदार।
और ये दोनों उजी नाम की जगह पर रहने वाली बहनों के प्रेम में पड़ते हैं।
हाँ, उइगिमी और नाका नौकिमी, और बाद में उनकी सौतेली बहन उकीफुने भी। लेकिन इन रिश्तों में गेंजी के जमाने जैसी बात नहीं है। यहाँ धोखा है, अनिश्चितता है, दुख ज्यादा है।
तो उजी अध्यायों का माहौल ज्यादा अंधेरा है।
हाँ, निश्चित रूप से। और कहानी का अंत भी खुलासा है। उकीफुने का क्या होता है ये साफ नहीं होता। ये शायद जीवन की अनिश्चितता और दुखों के चक्र को ही दिखाता है।
तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो मुख्य विषय क्या उभरते हैं जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाते हैं?
सबसे पहले तो वही मोनोनो अवारे, हर चीज नश्वर है, क्षणभंगुर है।
सुंदरता, खुशी, जीवन, सब कुछ जैसे चेरी के फूल जो खिलते हैं और झड़ जाते हैं। उपन्यास में प्रकृति के वर्णन इसी भाव को गहरा करते हैं।
जी, वो एक मीठी सी उदासी है, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना।
और दूसरा मुख्य विषय इंगा, कर्म।
बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत। गेंजी के कर्म कैसे लौटकर उसके सामने आते हैं, फुजित्सुबो वाला प्रकरण, और फिर काउरू का जन्म, कारण और प्रभाव,
और हेयान समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी सीमित आजादी के बावजूद उनकी आंतरिक शक्ति।
हाँ, और गेंजी की वो आदर्श की तलाश जो शायद दिखाती है कि पूर्णता का पीछा करना ही अपने आप में एक समस्या है।
और वो सौंदर्य और नैतिकता के बीच का संघर्ष। हेयान संस्कृति में सुंदरता सब कुछ थी, पर क्या वो हमेशा सही होती है? गेंजी का जीवन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है।
और जिस तरह से कहानी कही गई है, वो कथावाचक जो किरदारों के मन में झांक सकती है, ये उस वक्त के लिए बहुत नई बात थी।
तभी तो इसे पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहते हैं, किरदारों की भीतरी दुनिया पर जोर।
उरो कविताएं वाकई वो सिर्फ सजावट नहीं थीं, वो बातचीत का, भावनाएं जताने का तरीका थीं।
कोई पंक्ति या भाव जो आपके जहन में रह गया हो?
वो दुनिया की क्षणभंगुरता वाली बात, ये दुनिया घास पर ओस की बूंद जैसा एक सपना है, इससे क्या दिल लगाना।
या शायद वो कर्म बंधन वाली, अनजाने रास्तों पर चलते जाना, न जाने कौन से वादे हमें बांधे रखते हैं।
गेंजी की कहानी पढ़ने के बाद एक गहरा असर छोड़ती है। एक उदासी तो है, पर मानवीय भावनाओं की जटिलता और सुंदरता की एक समझ भी देती है।
हाँ, पात्र हजार साल पुराने हैं, पर उनका प्यार, उनकी जलन, उनकी महत्वाकांक्षा, उनका पछतावा, ये सब आज भी हमें अपने लगते हैं।
ये कहानी हमें रिश्तों की उलझी हुई गलियों में ले जाती है, और शायद ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में स्थायी खुशी मिल सकती है।
मुझे लगता है ये कहानी सिखाती है कि जीवन की सुंदरता शायद उसकी नश्वरता में ही है, और हमारे कर्म, चाहे अनजाने, हमारे कल को आकार देते हैं।
और ये हमें याद दिलाती है कि महान साहित्य समय के पार जाकर इंसान के मन की सच्चाइयों को दिखाता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।